प्रिंसिपल क्या
जिसकी बुनियाद
है?
पे आप ये कह रहे
हाँ,
हैं।
100 सवालों का एक सवाल, वो प्रिंसिपल क्या है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन सही है, ये गलत है,
हाँ
जिसने डिफाइन किया है इस बात को।
बिल्कुल।
अब देखें, अभी चंद दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक वो हजरत लगी हुई थी, वो मतलब जो एक खास स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक है, वत्तीन व ज़ैतून, कसम है हसन की और कसम है हुसैन की, तीन से मुराद हसन और हुसैन, जैतून से मुराद हुसैन रज़ी अल्लाह। अब मतलब तीन का माना हजरत हसन है और जैतून का माना जो है वो हजरत हुसैन, ये बात जो है वो कुरान से निकाल रहे हैं वो, और अल्लाह ने हसन और हुसैन की कसम खाई है। ठीक है, तो लोगों ने कुरान से क्या क्या
अब जारी बात है,
निकाला।
उसने
हाँ,
एक्सप्लेन करने में पता नहीं कहां तक पहुंचा होगा।
तो लोगों ने कुरान से क्या क्या निकाला हुआ, पहले ये तो देख लें।
हाँ, यानी
अच्छा,
कि आप सिर्फ अकेले नहीं है जो आप
हाँ
निकाल
हाँ
रहे
जो
हैं।
आप निकाल रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब आप देखें कि हमारे सामने ना ये सर सैयद की तफसीर है, ठीक
जी
है, तफसीर अल कुरान,
जी
ये जो कुरान मजीद की आयत है ना हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में,
जी
कि वो क्या करते थे, एक तो ये है कि वो गोद में कलाम करेंगे, अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, और दूसरा जो है अल्लाह सुबहान व तआला ने ये बात कही कि वह इस तखलुकु मिन अत्तीन कहैयत अत्तैर बिइज़्नी फतनफुख फीहा फतकून तैरन बिइज़्नी, अल्लाह ने उनके मुंह से बयान किया हजरत
जी
मसीह अलैहिस्सलाम के, कि आप क्या करते हैं, मट्टी से जो है वो एक परिंदे की शक्ल बनाते हैं मेरे हुक्म से, और फिर उसमें फूंक मारते हैं, ठीक है, और वो परिंदा जो है वो मेरे इज़्ज़त से उड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, अब इसकी तशरीह क्या की है, अब आप ये देखें, ये सर सैयद अहमद खान
जी
ने, ये साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन हो रही है ना,
जी
वो ये कह रहे हैं कि ये जो बात है ना, ये असल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे थे और बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे, ठीक है, और इसीलिए अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि जैसे बच्चे जो है वो बचपन में मट्टी से जो है ना वो मूर्तें बनाते हैं, शक्लें बनाते हैं, तो ये असल में वो बात हो रही है कि वो बचपन
अच्छा
में खेलते हुए जो है ना वो मूर्तें बनाते थे, तो अल्लाह ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा हजरत ईसा से, ठीक है, मा तफल, ऐसा क्या कर रहे हो, तो हजरत ईसा ने कहा काल मुजीबन लहू बेअन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहियत तय, तो हजरत ईसा ने कहा कि मैं ना ये मट्टी से परिंदों की मूर्ति बना रहा हूं, तो वो सर सैयद कहते हैं ये तो असल में ये बात थी कि हजरत ईसा जो है वो मट्टी में खेल रहे थे, बच्चे थे, अल्लाह ने पूछा तो हजरत ईसा ने जवाब दे दिया।
एक मुआजा मुआजे का इनकार कर रहा है,
अच्छा, फिर लाइन लगी हुई है ना, सिर्फ ये तो हमने एक उसकी
मिसाल दी है।
मिसाल दी। अच्छा, गुलाम अहमद परवेज साहब को देखें, ये भी कुरान की तफसीर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये क्या कहते हैं इसी आयत की तफसीर में,
अच्छा, इसी आयत के
इसी आयत की तफसीर में, इनकी ये जो तफसीर है इसका नाम मफहूमुल कुरान,
इल्तिमा
ठीक है, तो मफहूमुल कुरान में ये क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं इस वही के जरिए तुम्हें ऐसी हयात नो अता करूंगा जिससे तुम अपनी मौजूदा पस्ती खाक नशीनी से उभर कर फजा की बुलंदियों में उड़ने के काबिल हो जाओगे।
उधर लेके बात।
कि ये जो एज ऑफ एविएशन है, ठीक है, हवाई जहाज का जो
जी
दौर है,
जी जी
ये तो असल में उसकी बात हो रही है, हजरत ईसा
चलो,
का मौजा थोड़ा बयान हो रहा है, ठीक है, इस तरह
यानी कोई
तुम्हें
चीज बनाओ और उसके अंदर अपनी एनर्जी एंटर करो और वो उड़ने लगेगा।
कहां ये बात हो रही है कि अल्लाह ताला हजरत ईसा से मुखातिब है,
जी
तो
बिल्कुल।
अब ये कह रहे हैं कि ईसा भी नहीं, असल में तो तुमसे मुखातिब है,
हमसे, इंसान
हमसे,
से।
और ईसा अलैहिस्सलाम जो परिंदा बनाते थे और वो हवा में उड़ता था, ठीक है, उसमें फूंक मारते थे, तो इससे मुराद क्या है कि इंसान एक जमाने में जो है वो हवा में उड़ना शुरू कर
ऐसा कर
देगा
पाएगा?
जैसे आज उड़, मतलब हुदूद क्या है,
हाँ, ये किधर के बाद किधर चलेगी इतनी
ठीक
दूर?
है, आपकी हुदूद। अच्छा, हमने एक किताब लिखी है तहरीके तजद्दुद और मुतजद्दिदीन के नाम से, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है,
जी
इसमें कुछ मिसालें हमने बयान की हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम जरा इसको समराइज कर लेते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के बारे में ना, ये कहते हैं सर सैयद के जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा तो कुरान तो कहता है ना कि पानी खड़ा हो गया
जी,
तो
रास्ता बना दिया।
ये कहते हैं ये मद्दो जजर था, मद्दो जजर था, यानी पानी जो है वो समुंदर की लहरें जैसे नीचे चली जाती हैं उतर जाती हैं, तो जब उतरी हुई थी तो उस वक्त जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, और जब फिरौन का लश्कर गुजर रहा था तो वो वापस आ गए। हालांकि ये इसका ताल्लुक तो साहिल से है
जी,
समुंदर के दरमियान से तो नहीं है।
बिल्कुल
इसी तरह से अब आप देखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा कि वो जी सांप बन गया था, तो इसकी भी तावील कर दी नहीं, कोई सांप वांप नहीं बना था, ठीक है, वो असल में उनके तखय्युल था सिर्फ, बस इमेजिनेशन थी, उनको नजर आ रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो है वो सांप बन गया। हालांकि कुरान ने कहा है कि तखय्युल वो था जो जादूगरों ने
पैदा किया, जी जी, बकायदा डिफरेंशिएट किया है,
हजरत मूसा
ये असल हुआ है लेकिन वो धोखा था,
वो तखय्युल था,
वो धोखा था, आंखों का धोखा।
युहय्यलु इलैहि मिन सिखरि मन्नह तसा, वहां कुरान ने तखय्युल का लफ्ज इस्तेमाल किया लेकिन इसके लिए नहीं इस्तेमाल किया। मैदान बदर में जो हजार फरिश्ते जो है वो नाजिल
हुए,
ठीक है,
बकायदा कुरान की आयत है,
तो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि हजार गुना उनके दिल को तकवीयत दे दी थी
जो लड़ रहे थे।
हाँ, जो लड़ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप के पैदा हुए इसका इनकार कर दिया, ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, कहा कि ये तखय्युल था बस,
यानी जो भी मिरेकल्स हैं वो उनका इनकार करते थे।
मलाइका क्या है,
लेकिन सवाल ये है कि वैसे ही इनकार नहीं करते थे, वो उसके कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन कर देते थे।
इंटरप्रिटेशन
अब आप ये कह रहे हैं कि वो इंटरप्रिटेशन भाई कैसे कर दिया आपने, क्या उसूल इख्तियार किया, वो इतनी दूर ना निकल जाए तो वो कभी निकलेगा बंदा जब कोई उसूल नहीं होगा।
देखिए ना, मलाइका के बारे कहते हैं कि ये फोर्सेस ऑफ नेचर है, फिजिकल लॉज है,
जी जी
फिजिकल लॉज है। जिन्नात के बारे में क्या कहते हैं, जिन असल में छुपी चीज को कहते हैं, जैसे जनीन मां के पेट में बच्चा होता है, तो ये असल में वो लोग थे जो गारों में छुपे रहते थे, वो जड़ और गंवार लोग थे, ये कोई मखलूक नहीं है, अलहदे से नेचर। देखिए साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करने वाले तो ये लोग हैं भाई
जी,
जो जिन्नात का भी इनकार कर रहे हैं, यानी आप एक तरफ एलियंस का सबूत कर रहे हैं जिनका कुछ सर पैर ही नहीं है, और जिनके
और जो है
बड़ा पड़ा
है, जी जी,
ठीक है,
उसका ये इनकार।
सारी मजहबी रवायतें जिनके वजूद के ऊपर इत्तेफाक किए बैठी हैं, वो दूसरी तरफ साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन वाले उसका इनकार करने बैठे हुए हैं। तो मतलब साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन वाले इस वक्त दो एंड्स पे हैं
जी,
एक वो है जो तवाहुम की दुनिया में पड़ी हुई है
जी,
यानी जो चीजें ओहाम में भी साबित नहीं है, वहम व गुमान में भी साबित नहीं, वहम के दर्जे में भी नहीं है, उनको जो है वो यकीन बनाने पे लगी हुई है, और दूसरी तरफ वो है जो यकीनी तौर पे साबित चीजों को क्या कर रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं,
रिजेक्ट करने को।
ये दोनों अपने अपने तौर पर क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं,
यानी कि साइंस के जरिए ये दोनों काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, अच्छा, अब अच्छा ये तो खैर बहुत वो है ना, अपना थोड़ा काम है। इसके बाद अगर आप गुलाम मत परवेज को देखें, ये उनकी किताबें, अभी मैं सारी किताबें नहीं खोल रहा लेकिन मैंने अपनी किताब में उनके हवाले दिए, सलीम के नाम खत जो है गुलाम मत परवेज ने लिखा है अपने बेटे के नाम
जी,
तो कहता है कि सलीम कुरान फहमी में एक नुक्ता अगर तुम समझ लो ना बड़ी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वो क्या नुक्ता है जरा इस पर गौर कीजिएगा, जहां कुरान में लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह की जगह अगर तुम अल्लाह का कानून कह लिया करो तो बात बिल्कुल बात हो जाएगी। अल्लाह से मुराद क्या है, अल्लाह का कानून,
अल्लाह नहीं है,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ये तमाम तारीफें अल्लाह के लिए नहीं है, ये अल्लाह के कानून की तारीफ है। अल्लाह का कानून कौन सा है, वो जो उनका फलसफा था निजाम रुबूबियत का, इस पर उनकी किताब है गुलाम अहमद परवेज की, ये मार्क्सिस्ट थे, मतलब जो सोशलिज्म का जो एक फलसफा है बुनियादी तौर पे, तो वो जो कह रहे हैं कि एक सोशल सोसाइटी के अंदर एक गरीब को जो है वो खाने को रोटी मिल रही है, सरमादाराना निजाम के ये लोग खिलाफ थे ना, गुलाम अहमद परवेज पे काफी असरात थे इसके मार्क्सिज्म के मार्क से, तो अब वो कह रहे हैं कि इस कानून की बुनियाद पे ये जो कानून है ये अल्लाह ने दिया है, तो ये असल में इस कानून की तारीफ हो रही है, अल्लाह की तारीफ नहीं हो रही,
और फिर उस कानून को वो अपने कानून की तरफ ले जाता
है। हाँ, उसको फिर अपने कानून की तरफ ले जाता है कि अल्लाह के कानून से उसकी मुराद फिर शरीयत नहीं। अच्छा, जैसे आप अब देखें ना, ये क्या कहते हैं, वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, अब तशरीह क्या है कि जमीन में जो भी जानदार है उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है, तो क्या कहते हैं, हमने इस आयत में अल्लाह से मुराद लिया वो मुआशरा जो कानून खुदावंदी को नाफिज करने के लिए मुतशक्किल हो, यानी यहाँ अल्लाह मुराद नहीं है, क्योंकि अल्लाह मुराद लें तो फिर सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने तो रिस्क दिया ही नहीं कुछ लोगों को, तो यहां मुराद कौन है, सबको कब रिस्क मिलेगा, अल्लाह से मुराद कौन है, किसके जिम्मे है सबका रिस्क, सबका रिस्क जो है वो उस माशरे की जिम्मे है जो निजामे रुबूबियत के ऊपर कायम हो, यानी जो मार्क्सिज्म के ऊपर सोशलिज्म के ऊपर खड़ा हो
जी,
उसके जिम्मे है सबका रिस्क, और वो निजाम तो हमने कायम नहीं किया। ये भी निजाम के दाइयों में से है, ये हजरत भी निजाम के दाइयों में से है। तो इज्तिमाइयत की तरफ जो है दावा देने वालों में से, तो खैर बात यह है कि इज्तिमाइयत का चूरन भी लोग बेच रहे हैं
जी,
तो बांध बांध की बोलियों से बेच रहे हैं। तो ये नहीं कि एक बंदा जो है वो इज्तिमाइयत की तरफ लोगों को बुला रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सही तरफ ही बुला रहा हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी आप देखें ना, ये तो था इनका अल्लाह के बारे में, इसी तरह कहते हैं ये जो कुरान में आता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, इससे क्या मुराद है? कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुराद जो है सेंट्रल अथॉरिटी है, जो आप ये निजाम कायम करेंगे ना मार्क्सिज्म का सोशलिज्म का, ठीक है, उसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, उसको अल्लाह और उसके रसूल का दर्जा दे दिया। यानी अच्छा अभी आप मतलब आप देखिए ना, एक रेवोल्यूशनरी थॉट है ना इनकी, ठीक है। अब उस रेवोल्यूशनरी थॉट में क्या कहते हैं, जहन्नुम, जहन्नुम क्या है? जहन्नुम तो एक कल्बी कैफियत का नाम है, ठीक है। इसी तरह से जहाने फरदा में कहा है, इसी तरह जन्नत के बारे में भी कहा कि जन्नत क्या है, जन्नत भी जो है वो एक कैफियत का नाम है, कोई जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सवाल पैदा, वो क्यामत क्या है? क्योंकि क्यामत से मुराद होगा वो इनकलाबी दौर जो कुरान की रूह से सामने आया था, इनकलाबी दौर। असास से मुराद क्या है? हक को बातिल की वो आखिरी जंग जिससे बातिल की कुव्वतें शिकस्त खाकर बर्बाद हो जाती हैं। पूरा फलसफा इनकलाब का
जी,
ठीक है। मार्क्सिज्म आपने लेके आना है, जैसे रशिया में इनकलाब आ चुका था
जी,
ठीक है, वो आप अफकार फैले, ठीक है, जो भी थे मार्क्स के जो अफकार थे, तो अब जो भी उनके बड़े थे, लेनिन थे, टॉलस्टॉय थे, उन लोगों ने मेहनत तो की, बहुत से लोग हमारे यहाँ भी मुतासिर हुए, अब ये भी मुतासिर हुए, अब ये वो सारा फलसफा आखिर दर्जे में कुरान से निकाल और कुरान की जो बेसिक फंडामेंटल बिलीफ्स हैं, अल्लाह भी ईमान, अल्लाह
उसको भी चेंज कर दिया,
अल्लाह भी ईमान को बना दिया कि वो सोसाइटी
और अल्लाह और उसका रसूल सेंट्रल अथॉरिटी बना दिया,
सेंट्रल अथॉरिटी बना दिया, मतलब वो लोग जो इनकलाब लेके आए, जो मार्क्सिज्म लेके आए, जो रेवोल्यूशन,
ठीक है। यानी ये आप चौथा असूल ये बयान कर रहे हैं कि यानी कि ये मतलब है आपकी बातों के इतने एक्सप्लेनेशन के बाद कि कुरान की एक्सप्लेनेशन करने में दूर ना निकल जाए, इतना दूर निकल जाए कि वो जो ओरिजिनल चीज है उससे इतने मुनहरिफ नजर आए कि साफ अंधे को भी नजर आए कि भाई ये बंदा दूर चला गया, ये बात भी नहीं हो रही है और ये पता नहीं बंदा कहां पहुंच गया।
कि जो कुरान की बात कर रहे हैं ना, वो सब भी एक मफहूम पे तो मुत्तफिक नहीं है। चलें, जो जिन्हें आप ताना दे रहे हैं कि ये मौलवी है, अच्छा वो
अच्छा फिर सॉरी आपकी बात कर रहे, ऐसा भी नहीं है, आप ये भी गुलानी कदयानी भी नहीं किया है, फिर सैयद अहमद खान जो साइंस के लिए इतनी मेहनत करने वाले थे कि जब तक इस उम्मत के अंदर साइंस इलम नहीं आएगा ये उम्मत तरक्की नहीं कर सकती, उनका तो मुद्दा ये था, तो इन सब ने भी काम वो किया है जो आज आप कर रहे हैं।
हाँ, जो आप आज
यानी कि जरूरी नहीं है कि आप पहली दफा कुछ काम
कर रहे हैं,
ये हो चुका है।
हाँ, ये
कि लोग कुरान को इस अंदाज से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें जो वक्त के साथ हो, जो उस जमाने के साथ,
वो आपसे हजार गुना आगे जाके ये काम कर चुके हैं, जहां जाने का आप सोच भी नहीं सकते।
जी जी।
यानी आपको भी खौफ और डर आने लग जाएगा कि यार हम यहाँ जाके बात करेंगे कि क्यामत वाला दिन इनकलाब का दिन बन जाएगा,
हम ये नहीं करेंगे,
रेलेवेंस पैदा कर देंगे।
अच्छा, वो कहेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आप ये कह रहे कि भाई उसके फिर रसूल क्या होगा, किस बुनियाद पे ये कर सकते हैं, किस बुनियाद पे नहीं?
ये कहना कि मौलवी ये काम नहीं कर रहे, भाई ये कोई काम पहली दफा आप नहीं कर रहे, बहुत दफा हो चुका,
और इन लोगों को मौलवियों की वजह से ही जो है वो रिजेक्ट इस अंदाज से हुआ कि लोगों ने इनकी तफसीर को, इनकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया।
बात ये है कि ये पहले खुद तो एक बात पे मुत्तफिक हो गए ना, अब हम किसकी इंटरप्रिटेशन माने? जो लोग कहते हैं कुरान, देखें मौलवी को तो आपने कह दिया ये लिटरलिस्ट है, अच्छा चले वो लिटरलिस्ट है, लिटरलिज्म की वजह से वो सब एक माने पे मुत्तफिक है, कम अज कम एक माने पे तो
मुत्तफिक
है, ये इंटरप्रिटेशन है। आपने मेटाफर लिया, एक का मेटाफर ये है, दूसरे का नॉर्थ पोल में, तीसरे का साउथ पोल में, वो खाते इस्तेवा पे बैठा हुआ है, मतलब जब आप इतने ज्यादा उसमें चले गए मजाज किनाई के पास के अंदर, तो फिर एक इंटरप्रिटेशन गुलाम अहमद कादियानी कर रहे, दूसरी सर सैयद अहमद खान कर रहे, तीसरी गुलाम अहमद परवेज कर रहे, चौथी जो है मौलाना अमीन हसन इसलाही साहब कर रहे हैं, पांचवीं गामदी साहब कर, मतलब किसकी तरफ आप जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद कर, कौन, मतलब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, कौन, किसकी तरफ आप जाएंगे? एक इमरान अहमद हुसैन साहब कर, तो किसकी तरफ आप जाएंगे? ये है कि मेटाफर मुराद लेने
की असूल सेट करने होंगे,
मेटाफर मुराद लेने की सूरत में, क्योंकि मेटाफर तो 100 तरह से हो सकता है, ठीक है। अभी हमने एक आयत को देखा ना, सैयद उसकी क्या तफसीर कर रहे हैं
और उसी की दूसरा बंदा
सैयद कह रहे हैं कि बचपन में खेलते थे हजरत मसीह इब्ने मरियम जो है वो परिंदों से, तो अल्लाह ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है परिंदे बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो गुलामत परवेज तरफ ले गए कि इससे मुराद जो है वो क्या
एज ऑफ एविएशन,
एविएशन। कहने का मकसद ये है कि ये पहले खुद तो एक बात पे मुत्तफिक हो जाए ना, फिर उम्मत को दावत दें कि जी अब आप
हम मुत्तफिक हैं, ये एक क्लब हमारा मुत्तफिक हो गया, हमारे क्लब की तरफ आ जाए,
मौलवियों के पीछे ना चले
हमारे तरफ।
अच्छा मौलवी के पीछे ना चले, फिर किसके पीछे चले,
हमारे
50 आपके पीछे लगे हैं, 50 उसके पीछे लगे हैं, वो जो मतलब अपना वो कहते थे खलील रहमान कमर साहब के 35-36 औरतें हैं, तो बस यही मामला है सर, 35-36 अफराद हैं हर एक के पीछे पीछे लगी हुई है। तो ये ठीक नहीं है, मतलब यह है कि कुछ हदूद हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है? तो हमने एक बात कही, उसूली तौर पे बात कही, वो क्या है? तफसीर बिल मासूर, सबसे बड़ी हद क्या है तफसीर बिल मासूर, कि ये एक दायरा है, एक सर्कल है। तफसीर बिल मासूर किसे कहते हैं? कुरान के जरिए तफसीर नंबर वन, कुरान की हदीस के जरिए तफसीर दो, कुरान की सहाबा के अकवाल के जरिए तफसीर, कुरान की ताबीन के अकवाल के जरिए तफसीर, जिसे हम सलफ सालीन की तफसीर भी कहते थे। ये जो तफसीर है, सबसे पहले कुरान की किसी आयत की तफसीर करते हुए आप ये चार चीजें सामने रखें, ठीक है, सहाबा की तफसीरें खोल लें, ताबीन की तफसीरें खोल लें, हदीसें खोल लें उस आयत की इंटरप्रिटेशन में, और कुरान की मुख्तलिफ आयात खोल लें
जी।
अब इस सब ने जो एक दायरा खींच दिया है ना, उससे बाहर ना निकले
जी, वरना गुमराह होने का खतरा,
गुमराह होने का खतरा कि आप गुमराही में पड़ गए
जी,
गुमराही में पड़ गए। वही हमने कहा ना कि कब तय होगा कि आप बॉर्डर लाइन के उस तरफ हैं, सर सैयद अहमद खान बॉर्डर लाइन के उस तरफ हैं, गुलाम अहमद कादियानी बॉर्डर लाइन के उस तरफ हैं, गुलाम अहमद परवेज बॉर्डर लाइन के उस तरफ हैं, कैसे तय?
तभी तो इस तरह कर रहे हैं,
तफसीर बिल मासूर को छोड़ा है,
तभी तो इस तरह कर रहे हैं,
तफसीर बिल मासूर को छोड़ा है। तो जब आप तफसीर बिल मासूर को छोड़ेंगे तो कुरान एक खिलवाड़ बन जाएगा। कुरान ने कहा युदिल्लु भी कसीर व यादी भी कसीर,
कुरान से ही,
कुरान से ही लोग गुमराह होते हैं,
बिल्कुल
कुरान से ही बहुतों को हिदायत
हिदायत मिलती
है, ठीक है। और ओरिएंटलिस्ट को आप देखें, प्रोफेसर की एक जमात है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, मतलब उन्होंने सालों लगाए
जी,
ठीक है। आसर जेफरी को देखें, 40 साल लगाए उसने कुरान पे 40 साल उसने लगाए, मुस्तशरिक था
रिसर्च की,
हाँ रिसर्च। तो लेकिन क्या है, नेगेटिव है, जहन नेगेटिव है, कुरान से जो है वो कीड़े निकालने,
यानी कि उसने साबित करना है कि भाई
कुरान में गलतियां
जी,
जैसे बाइबल में अगर गलतियां हैं
इसमें भी है।
बात यह है कि कुरान पे मेहनत का रुख सही होना चाहिए,
यानी कि मेहनत वो भी कर रहे हैं, 40 साल लगाकर गलतियां निकाल रहे हैं, मेहनत तो वो भी कर रहा है।
तो कुरान की खिदमत जो है ना, कुरान की खिदमत आप पॉजिटिव अंदाज में करें, इस तरह से करें कि लोग कुरान के साथ जुड़ें, और सही मनज, सही अप्रोच के साथ करें, जो एकेडमिक अप्रोच है, ठीक। तो अब हम बस थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, हम इसको वाइंड अप करते हैं अपने इसको ना, वो ये है कि हमने ये जो अभी गुफ्तगू की है तफसीर बिल मासूर की, इसके हमारे पास क्या दलाइल है। देखिए सबसे पहले तो कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ताला ने कहा किताब उन्हकमत आयात फुस्सिलत मिन लदन हकीमिन खबीर, कि अल्लाह ताला ने शुरू में कुरान की जो आयात है ना मुहकम रखी, मुख्तसर है, मुहकम है, बाद में अल्लाह ने उनको खोल के बयान किया। तो कुरान अपनी तफसीर खुद करता है, कुरान की एक आयत है, आप उससे मिलती जुलती आयात लेके आए, कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप वो सारे नजायर सामने रख लें कि कुरान में ये लफ्ज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक बात जहन में रखनी है, तफसीर उल कुरान बिल कुरान हमेशा तफसीर उल कुरान बिल कुरान नहीं होती। बाज़ुकात एक बंदा क्लेम कर रहा होता है कि मैं कुरान के जरिए तफसीर कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो अपनी राय से और ख्वाहिश से कुरान की तफसीर कर रहा होता है, इसमें फ़र्क करना चाहिए। अच्छा कुरान के जरिए तफसीर, जैसे इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल जो है ना वो बहुत वाज़े अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह ताला ने कहा कि औलिया अल्लाह कौन है, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ तस्वुर है ना औलिया अल्लाह का, कोई गद्दी हो और कोई 10,000 जो है वो आपके पीछे मुरीद हों, फॉलोअर्स हों, कोई चंदे चंदे आ रहे हों, कोई कब्र पे आप बैठे हों, कोई आप बैत इरशाद कर रहे हो, ये हमारे यहाँ औलिया अल्लाह का कॉन्सेप्ट बन गया है, ठीक है। कुरान क्या कहते हैं औलिया अल्लाह कौन है? कुरान ने कहा अल्लदीन आमनु व कामिल तक्वा, जो ईमान लेके आए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अब ये तफसीर कुरान बिल कुरान, औलिया अल्लाह कौन है, खुद कुरान ने वादे कर दिया, ये तफसीर कुरान बिल कुरान है, ठीक है। वस्समाई व तारिक व मा अदराका मत तारिक अन्नजमु साकिब, तारिक क्या है, अन्नजमु साकिब,
कुरान खुद ही बता दिया।
लेकिन बाज़ुकात जो कुरान के जरिए तफसीर की जाती है ना, वो राय की कबील से होती है, इस दोनों में फर्क करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इस क्लेम पे नहीं चले जाना कि कुरान की एक आयत है, उसके नीचे आपने एक आयत लिख दी, तो आपने कह दिया कि ये तो मैंने कुरान के जरिए तफसीर कर दी। ऐसा ही अप्रोच है, इल्म के अंदर गहराई होती है। अब जैसे देखें कुरान मजीद की एक आयत है, जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कि हमने बेशक जिक्र को नाजिल किया कुरान को, वह इन्ना लहू लहाफिज़ून, और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। आमतौर पर इससे मुराद क्या लिया गया, कुरान। लहू में हु ज़मीर, ये जो प्रोनाउन है किसकी तरफ लौट रहा है, कुरान की तरफ। अल्लाह ताला कह रहे हैं हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। अच्छा, बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ पे मुराद जो है ना कि हम उसकी हिफाजत करें, यहाँ से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उन्होंने कहा इसकी दलील क्या है, इसकी दलील उन्होंने कहा कुरान मजीद की ये आयत है, ठीक है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ताला आपको लोगों से क्या करेगा, आपके दुश्मनों से बचा लेगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। देखिए बात यह है, ये बात तो क्लियर है कि ये कहा अल्लाह ताला ने, लेकिन क्या वहां पे भी यही मुराद है, ये तो आपकी राय है, ये तो आपकी ओपिनियन है। अल्लाह ताला आपको बचा लेंगे, आपके दुश्मनों से आपकी हिफाजत करेंगे, आपको आप बॉडी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। एक वक्त में ये आयत नाजिल हुई थी तो अल्लाह के रसूल ने अपने पहरा उठा दिया था, सहाबा को मना कर दिया था। तो अब ये तो ठीक है, बिल्कुल वाज़ह है, हकीकत हक, लेकिन क्या वहां पे भी यही मुराद है, ये तो आपकी ओपिनियन है, ये तो आपकी राय है,
बिल्कुल सही बात,
इसमें फर्क करना।
हाँ, बिल्कुल सही बात।
तो कुरान की तफसीर कुरान के जरिए ये पहला प्रिंसिपल है, नो डाउट हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये एनालिसिस जरूर करेंगे कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि कुरान के जरिए तफसीर है, ये बन रही है कि नहीं बन रही,
बिल्कुल
ये आपकी राय तो नहीं,
बिल्कुल ठीक।
दूसरी चीज क्या है कि कुरान की हदीस के जरिए से तफसीर, ठीक है। अब आप देखें हमारे सामने जो है ना इस हवाले से, ये कुरान मजीद की एक आयत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया वंजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिन, कि हमने आपकी तरफ कुरान मजीद नाजिल किया ताकि आप इसको खोल खोल के बयान करें लोगों के लिए, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया। आप सल्लम की ये जिम्मेदारी थी, ठीक है, और आप सल्लम कुरान मजीद को खोल खोल के बयान किए, तो हम वही कह रहे हैं ना कि अल्लाह के वसल्लम की रिस्पांसिबिलिटी थी कुरान ने कहा कि आप कुरान को खोल खोल के बयान करें, कुरान की इंटरप्रिटेशन करें, कुरान की तफसीर करें। देखिए हम इधर उधर की तफसीरें देखते हैं तो अल्लाह के रसूल की तफसीर क्यों नहीं देखते, हमारे जहन में ये बात क्यों नहीं आती कि भाई अल्लाह के रसूल ने इसकी कोई तफसीर की है कि नहीं की, बजाय इसके कि मैं राजी को देखूं, तबरी को देखूं, और मैं जो है वो इस्लाही और फराइज साहब को देखूं, अल्लाह के रसूल सल्लम की तफसीर है।
बिल्कुल,
बहुत आम बात है अल्लाह के रसूल सल्लम की तफसीर का मिल जाना, तो हदीसों में अल्लाह के रसूलम की तफसीर को ढूंढना बहुत आम, तो ये हम ढूंढेंगे इसको, क्योंकि कुरान ने इसका हुक्म दिया कि आप सल्लम का ये फर्ज मनसबी था, आपका ये फरीजा था, ड्यूटी थी कि आप कुरान मजीद को इंटरप्रेट
करें।
अब इसमें जैसे हमारे सामने जो है वो अब एक मिसाल है, अल्लाह के रसूल एक सहाबी के साथ थे मस्जिद में, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें मस्जिद में निकलने से पहले एक अजीम सूरत के बारे में बताऊंगा। तो जब निकलने लगे तो उन सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल आपने ये बात कही थी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो सूरत है ना, हिया असबल मसानी, ये सभी मसानी है, वल कुरान अज़ीम, और यही कुरान अज़ीम है जो मुझे दिया गया है, ठीक है। ये अल्लाह के सल्लम ने कहा। अच्छा, कुरान मजीद में एक आयत है वलकद आतैना का सब मिनल मसानी वल, हमने आपको सब मसानी दिया और कुरान अज़ीम दिया। अल्लाह के सल्लम क्या कह रहे हैं, सब मसानी से क्या मुराद है,
फातिहा,
सूरह फातिहा, सूरह फातिहा सब मसानी, सात बार बार दोहराई जाने वाली आयात। अमीन हसन इसलिए साहब कहते हैं कि सब मसानी से मुराद सात ग्रुप्स हैं कुरान मजीद के, ठीक है। कुरान को उन्होंने सात हिस्सों में तकसीम कर दिया
जी,
अमीन हसन इसलाई साहब ने रहमतुल्लाह, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए उनकी लफ्ज़ों के। तो देखिए बात यह, इंटेंशन उनकी भी अच्छी थी, दीन की खिदमत करना चाहते थे, बात इंटेंशन सबकी अच्छी होती, लेकिन हम वही बात कर रहे हैं कि तफसीर बिल मासूर आपके लिए एक दायरा खींच देती है, उससे आपने बाहर नहीं निकलना। अब ये जो हदीस थी ये सही बुखारी की हदीस है,
इतनी क्लियर हदीस।
हाँ, ये जो हदीस है अब आप देखें, ये सही बुखारी की हदीस है 4703,
यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट तफसीर कर रहे हैं उसके,
कि सब मसानी से मुराद सूरह फातिहा, और आप कहें कि इससे मुराद सूरह फातिहा नहीं है,
सात ग्रुप से,
ठीक है, और ये गलत कौल है, और ये भी साथ कहते हैं कि ये गलत कौल है।
अच्छा,
ठीक है, और इससे मुराद कुरान मजीद के सात ग्रुप हैं। सात ग्रुप क्या हैं कि जी, पहला ग्रुप फलां से फलां सूरत तक है, दूसरा ग्रुप फलां से फलां सूरत से, तीसरा ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए आपके पास, कुरान मजीद के सात ग्रुप है,
बिल्कुल,
और फलां सूरतें जो है पहले ग्रुप में शामिल है, फलां दूसरे में शामिल है, फिर हर ग्रुप का जो है वो एक मरकजी ख्याल है, सेंट्रल आइडिया, और उस ग्रुप की जितनी सूरतें उस सेंट्रल आइडिया के गिर्द घूम रही है। देखें बात तो सारी मजा दे रही है, तो कहते हैं ना चस आ रही है, ठीक है, तो वो सारा कुछ होगा, लेकिन जिस सती तरीके से आप वो बात कुरान से निकाल रहे होंगे और उसकी अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहे होंगे,
आप वैसे कुरान को समझाने के लिए किसी को कह सकते हैं कि भाई कुरान की अगर आपने स्टडी करनी है तो इस तरह कर लें ताकि आपको पूरा कुरान का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप कुरान से उसको निकाल रहे,
कुरान से निकाल रहे,
ये ठीक,
वो ठीक नहीं है। आप कुरान के 7 ग्रुप बना लें, 17 ग्रुप बना लें, लोगों को
समझाने के लिए, कुरान के करीब करने के लिए,
कुरान के कोई कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप अपने ख्यालात को
उधर से साबित करें, कुरान
उधर से साबित करना शुरू कर देते हैं तो ये गलत है। कुरान इसको क्या कहता है, इफ्तरा अल कज़िब, अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ना, यही तो मुशरिकीन मक्का करते थे, यानी वो जो उनके अकायद थे वो उन अकायद की निस्बत किसकी तरफ करते थे,
अल्लाह
की तरफ करते थे।
ऐसे
यानी अगर ये कहते ना ये हमारे हैं, वो कहते थे ये तो दीन इब्राहिमी है, अल्लाह ताला ने हमारे बाप दादा के ऊपर ये दीन नाजिल किया, अल्लाह के वसल्लम को, तो वो ये कहते थे। तो बात ये है कि ये असल में जो है ना वो गलती ये है, कुरान और हदीस से जब आप इस्तिंबात की बात करते हैं वहां मोहतात हो जाना चाहिए, वहां आपके पास जब तक कोई मजबूत जिसे कहते हैं ना किला ना हो उस वक्त तक आपको गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल।
अच्छा, तीसरी चीज इसमें क्या है, तीसरी चीज इसमें ये है, ये जो आयत पहले गुजरी है कि सहाबा इकराम के अकवाल क्यों, इन्ना जअलनाहु कुरानन अरबिया लअल्लकुम ताअकिलून,
उनकी जुबान में,
उनकी जुबान में कुरान
मजीद, ये वाज़ह है,
और अल्लाह ने कहा लअल्लकुम ताअकिलून ताकि तुम्हें समझ में आए, यानी कुरान का वही मफहूम
ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी बयान कर रहा है कुरान साथ ही कि मैंने तुम्हारी जुबान में इसलिए उतारा ताकि तुम्हें समझ,
तुम्हें समझ में आए, कुरान का वही मफहूम मोतबर है जो सहाबा को समझ में आया। ये आम बात है, जो मफहूम सहाबा को समझ में आया वही मोतबर है, उस मफहूम के खिलाफ अगर आप हो गए तो कुरान की इस आयत का रद्द कर,
ठीक,
आप इसके खिलाफ चले जाओ,
और वो आप पहले कह चुके हैं वैरायटी हो सकती है लेकिन कंट्रडिक्शन नहीं हो सकती।
अच्छा, इसमें एक अहम बात है, ये जरा थोड़ी सी गहरी बात है, एक बात तो यह है कि सहाबा के बाद हमने कहा ताबीन, बल्कि तबा ताबीन के अकवाल भी बास अहले इल्म शामिल कर लेते हैं, उसकी दलील क्या, ये सही बुखारी की रवायत है 2651 कि अल्लाह के रसूल ने कहा खैरुकुम करनी, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, सुम्मल्लदीन यलूनहुम, फिर उसके बाद सहाबा का जमाना, सुम्मल्लदीन यलूनहुम, फिर उसके बाद ताबीन का जमाना, ये बेहतरीन जमाने, फिर उसके बाद क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, फिर उसके बाद तो ऐसे लोग आ जाएंगे कि मतलब ये है कि उनसे गवाही तलब नहीं की जाएगी और वो गवाही देंगे, ठीक है, और नजर मानेंगे लेकिन नजर पूरी नहीं करेंगे, बात बात के ऊपर बाज़ रवायातों में ये भी है कि झूठ उठा, झूठी कस्में उठाएंगे तो झूठ आम हो जाएगा, झूठ फैल जाएगा। तो तीन जमानों की अल्लाह के रसूल ने तारीफ की। अच्छा, एक और हदीस है हमारे सामने, ये हदीस जो है वो सही बुखारी की है, ये भी हदीस सही बुखारी की है कि लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे और कोई चीज जो है ना कोई शहर फतह नहीं हो रहा होगा, तो फिर लोग कहेंगे कि भाई कोई ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह के रसूल की सोबत नसीब हुई हो, तो जवाब दिया जाएगा हाँ, तो उसकी दुआ से उसकी बरकत से लोगों को फतह दे दी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें लोग जिहाद करेंगे और लोग ये कहेंगे कि भाई वो कि जिसे किसी सहाबी की सोबत नसीब हुई वो हमें है, फिर उसकी बरकत से उसकी दुआ से लोगों को फतह मिल जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से फिर इसके बाद कभी मामला चल सो चले तब ताबीन के बारे में भी। कहने का मकसद यह है कि ये वो लोग हैं, सहाबा की जमात होगी, उसके बाद ताबीन और तबा ताबीन, इनकी जो फजीलत है वो क्यामत तक आने वाले उम्मत के जितने तबकात हैं उनके ऊपर साबित है कि ये उनमें बेहतरीन लोग हैं। जब बेहतरीन है किस एतबार से, इल्म अमल दोनों एतबार से बेहतरीन है,
तो जब यानी कि एज ए शख्सियत तो कुछ शख्सियत की तो वो वैल्यू नहीं, जो वो शख्सियत की वैल्यू उनके इल्म तकवा की वजह से,
तो उनके इल्म से हमें इस्तेफादा करना चाहिए। तो अब बात
यानी कि तफसीर में उनके अकवाल अगर कुरान और सुन्नत से डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहे तो फिर हम सहाबा की तरफ जाएं या ताबईन की तरफ जाएं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान उनकी जुबान में नाज़िल किया
और उनको अल्लाह ताला ने उम्मत के बाद में आने वाले तबके
बेहतरीन भी कहा, बेहतरीन,
और उनके फजाइल अल्लाह ने बयान,
बिल्कुल,
और भी मतलब बहुत सी लाजिक हो सकती है कि ताबईन ने जैसे सहाबा से इल्म हासिल किया
जी,
जब सहाबा की तफसीर में बरतरी साबित हो गई तो वो उनके
स्टूडेंट थे,
तो उनका जो अक्सर बेशतर तफसीर का इल्म था, ताबीन का इकरमा हो गया, मुजाहिद हो गया, तो ये कहाँ से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शागिर्द है ना
जी जी,
तो इनमें से वो भी है जो कहते हैं कि हमने 60 मरतबा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के सामने कुरान पेश किया, और एक एक चीज का माना जो है वो उनसे सुना।
सुभानअल्लाह।
तो अब वो जो मानी बयान कर रहे हैं उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स सहाबा है, ताबीन का सोर्स सहाबा है, तो इसलिए ताबीन की तफसीर की अहमियत बढ़ जाती है। सहाबा का सोर्स क्या है? अल्लाह के रसूल, या फिर अल्लाह के रसूल से उन्होंने तरबियत पाई है, तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सहाबा और ताबीन की तफसीर बाइंडिंग है या उसमें खता का इम्कान नहीं है? देखें, कुरान की कुरान के जरिए तफसीर जो क्लियर है, नहीं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, और हदीस अल्लाह के वसल्लम की आ गई, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सहाबा की जो तफसीर है, क्या सहाबा से गलती नहीं हो सकती? एक उसूली सवाल पैदा हो सकता। तो एक तो उसूल तफसीर में इस पर बास मौजूद है, दूसरा उसूल फिक में कौली सहाबी की बास मौजूद है। हमारे यहाँ उसूल मुदवन हो गए, सबसे पहले इमाम शाफी ने काम किया, इमाम शाफी ने जो रिसाला लिखी थी उसमें उसूल तफसीर बयान किए, उनको पढ़ना चाहिए। बल्कि आजकल हमारे लेक्चर चल रहे हैं उसूल रिसाला के ऊपर, ऑनलाइन हमारी क्लास चल रही है, उसके बाद से आज तक मामला चल सो चले। तो 1400 साल उम्मत की एक तारीख है ना, जिसमें कुरान को इंटरप्रेट करने के उसूल, उनके ऊपर डिस्कशन जारी हुई है और उस पर लोगों ने लिखा है। तो आप पहले उन उसूलों को तो देखें, क्या आप उन उसूलों से इत्तेफाक कर रहे हैं?
बिल्कुल,
अगर इत्तेफाक करते हैं तो वेल एंड गुड। अब आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक है कि नहीं, अगर नहीं कर रहे तो आपके अपने उसूल तफसीर क्या है वो बयान करें, सबसे पहले तो वो बयान करें। ऐसे तो नहीं इधर की हांके उधर की हांके,
बिल्कुल
उसूली आदमी है।
बिल्कुल।
तो हम ये बात कर रहे थे कि
तो एंड ऑफ टाइम्स के बारे में भी सारी यही गुफ्तगू हो गई
कि सहाबा किराम
ये सारी की सारी चीजें वहां पे आप लगा दें कि एंड ऑफ टाइम्स को अगर आपने बयान करना है तो उसको भी इसी तरह हम असूल के जरिए ही बयान कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। बाहर करेंगे तो आप कह रहे हैं कि वो बंदा मुखालिफ सिमत में चल रहा है, जिस सिमत में सहाबा और ताबईन रसूलुल्लाह का दौर चला उसके मुखालिफ चल रहा है। अगर इसके अंदर है और थोड़ी सी वैरायटी पेश कर रहा है, मुखालिफ नहीं जा रहा है लेकिन एक वैरायटी पेश कर रहा है, उसी लफ्ज़ को उसी बात को थोड़ा और खोल के बयान कर रहा है या उसके लिए और ज्यादा एविडेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उसी मौकफ के लिए, तो फिर तो ठीक हो सकता है। लेकिन उसे कंट्राडिक्ट अगर करेगा तो फिर जारी बात है गुमराही की तरफ जा रहा है।
एक बात अहम है इसमें कि सहाबा किराम में भी बाज़ुकात कुछ लोगों को गलती लग जाती थी। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, आपने सुनी होगी, बल्कि हम में से सब लोगों ने सुनी होगी, ये सही बुखारी की है 1916 कि जब कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई ना, वकुलू वशरबू हत्ता यतबयन लकुम अल खैतुल अबयदु मिन अल खैतुल अस्वद मिन अल फज्र, ठीक है, कि उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक के सफेद धारी से आधारी से जुदा ना हो जाए फजर के वक्त। तो इससे मुराद सहरी का वक्त था। तो एक साहबी ने क्या किया, अपने तकिए के नीचे सफेद धागा और स्याह धागा रख लिया, सारी रात देखते रहे कि जी कब मुझे जो है ना दोनों में फर्क नजर आए। तो सुबह हाजिर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो मेरा जो है वो नजर नहीं आया और ये सूरज तुलू हो गया, फिर जाके जो है वो मुझे दोनों में फर्क नजर आया। तो अल्लाह के सल्लम ने कहा भाई तुम्हारा तकिया तो बहुत वसी है, तो मतलब ये है कि ये वो मुराद नहीं था जो तुम समझ रहे हो। तो सहाबी को गलती लग सकती है लेकिन आमतौर पर नहीं लगती, मेजोरिटी को आमतौर पर गलती नहीं लगती। एक बात तो यह है कि जब भी हमें सहाबा की तफसीर की तरफ जाना है तो हमने ये बात देखनी है कि मेजोरिटी का क्या मौके। दूसरी बात यह कि बाज़ुकात बड़ी तादाद में सहाबा को भी गलती लग जाती है, एक बड़ी तादाद को भी। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें सही बुखारी की एक रवायत है 1420 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने सहाबा से यह बात कही, अज़वाज मुतहरात से, जब उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लम हम में सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, मतलब दुनिया से आप जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन जो है वो आपसे मुलाकात करेगा। तो अल्लाह के रसूल ने उसके जवाब में क्या कहा, अतवालुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे लंबे हैं वो मुझे सबसे पहले मिलेगा। तो अब सहाबियात ने, अजवाज ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो अपने हाथ जो है छड़ी से मापना शुरू कर दिया सबने। तो हजरत सौदा के जो हाथ थे वो सबसे लंबे थे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले हजरत सौदा की वफात होगी रज़ी अल्लाह। लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद जो वफात हुई सबसे पहले वो हजरत ज़ैनब की हुई रज़ी अल्लाह। तो जब हजरत ज़ैनब की वफात हुई तो फिर सहाबियात कहती हैं कि हमें पता चला कि इससे मुराद जो है ये नहीं था कि किस फिजिकली किसके हाथ सबसे लंबे,
ये मेटाफोर,
ये इस्तियारा था। तो हदीस में भी इस्तियारा होता है, ठीक है,
यानी ये अमल के एतबार से था,
हैं
ये किस एतबार से था, अमल के एतबार से
नहीं, था अल्लाह के रसूल ने प्रिडिक्ट की ना। अभी हम पशीन गोइयों की बात करना जा रहे हैं, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या पशीन गोइयों में इस्तियारा हो सकता है, ये भी अल्लाह के रसूल की एक पशीन गोई थी
जी,
कि प्रेडिक्शन थी ना कि सबसे पहले कौन मिलेगा। लिटरल मीनिंग वहां पे मुराद नहीं थे, लेकिन एक अहम बात यह है कि वो जो मेटाफर और इस्तियारा होते हैं ना, उसके कुछ उसूलो जवाबित होते हैं, उसूलो जवाबित होते हैं, यानी उसका वो माना मोतबर होता है, यानी मेटाफर भी अहले लुगत का ही मेटाफर मुराद होगा,
हमारा नहीं,
हमारा नहीं कि हम क्या मेटाफर में मुराद ले रहे हैं। इसको कहते हैं कि लुगत में हकीकत भी मुतय्यन होती है, मजाज भी मुतय्यन होती है। लुगत का बहुत बड़ा इमाम है अल्लामा ज़मख़्शरी, उसकी किताब है असासुल लुगा, डिक्शनरी है अरबी जुबान की, उसको आप उठा के देखें तो वो कहता है इस लफ्ज का हकीकी माना ये है, वजी माना ये है, और इसका मजाजी माना ये है, यानी मजाजी माना भी तय है। ठीक है, हाथ लंबे होना इसका मजाजी माना ये है, वो अरबों के यहाँ आम मुहावरे में इस्तेमाल में था। ये नहीं कि आज मैं ये तय करूंगा कि हाथ लंबे होने का मजाजी माना ये है, मतलब मुझे मजाजी माना भी वही मुराद लेना है जिसकी दलील मैं अरबों के यहां से ला सकूं, दौरे जाहिलियत की अरबी से ला सकूं। आप बात समझ रहे हैं ना?
जी जी।
आज का मजाज मैं पैदा नहीं करूंगा, ये तो मेरे मीनिंग होंगे ना, अच्छे ये तो वो अरबी नहीं है
जी।
ठीक है, तो मुझे अगर बात करनी है अरबी के हवाले से तो वो मुहावरे अरब से मुझे दलील लेके आनी है, तो ये बात अहम है। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि बाज़ औक़ात सहाबा कराम में जो है वो इख्तलाफ हो जाता है। आप इस बात पे जोर दे रहे होते हैं जी फलां सहाबी की तफसीर है, देखिए बात यह एक सहाबी की तफसीर है, किसी सहाबी की तफसीर और भी हो सकती है, फिर आप क्या करेंगे जब टकरा जाए, तो आप जाहिर बात है एक सहाबी की तफसीर की तरफ जाएंगे
जी बिल्कुल,
और आपको उसके लिए दलील कायम करनी पड़ेगी कि आप इस सहाबी की तफसीर की तरफ क्यों जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यौम तअतिस समाउ बिदुखान मुबीन, ये जो है कुरान मजीद में सूरह दुखान के अंदर कि जिस दिन आसमान आएगा एक दुनिया के साथ बहुत वाज़े धुआं होगा आसमान पर, इसके बारे में एक हदीस हमें मिलती है, ये सही मुस्लिम में रवायत है, ठीक है 2798 हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से। इस रवायत में क्या है कि एक बंदा जो है वो मस्जिद में आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को कहता है कि एक आदमी इस आयत की तफसीर कर रहा है अपनी राय से, वो कह रहा है कि ये जो कुरान कह रहा है ना कि यौम तअतिस समाउ बिदुखान मुबीन के आसमान जो है वो एक धुआं लेके आएगा, इससे मुराद क्या है? धुआं है जो क़यामत से पहले आएगा और इस तरह छा जाएगा कि अहले ईमान को तो जुकाम लगेगा, और बाज रवायात में ये भी है कि जो काफिर होंगे ना उनकी गोया के आप कह लें कि जी सांस बंद हो जाएगा, उनकी तो जिंदगी अजाब बन जाएगी। तो वो आदमी ये तफसीर कर रहा है, किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कहा, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने इस पे कहा कि भाई जिसको इल्म नहीं है ना वो तफसीर ना करे, वो ये कह दे कि अल्लाह बेहतर जानता है, और ये भी इल्म है ये कहना भी कि अल्लाह बेहतर जानता है। इस आयत की तफसीर ये है कि आगे उन्होंने बयान किया लंबा चौड़ा वाक्या, इसको आप हदीस में देख सकते हैं कि कहत पड़ा था, ठीक है, अल्लाह के वसल्लम ने बद्दुआ की थी अहले मक्का के लिए कि इन पर ऐसा कहता है जैसा कि जो है वो कौमें यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आया था। तो अब वो कहत पड़ा तो इनको उस भूख की वजह से आसमान ऐसे नजर आता था कि जैसे हर तरफ जो है वो धुआं ही धुआं, तो ये मुराद है, गोया कि उन्होंने कहा कि ये वाकई हो चुका है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ने कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि नहीं, ये क्यामत की निशानियों में से है, क्यामत से पहले एक धुआं आएगा। अच्छा, उसके लिए एक दलील है जो कि रवायत हमें सही रवायत है, ये भी सही मुस्लिम की है 2901 कि क्यामत से पहले जब 10 निशानियों का अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया, कहा कि क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 10 निशानियां ना जाहिर हो जाएं, उनमें अब दुखान है और दज्जाल है,
दुखान भी है
उनमें मेजर साइंस में। तो अब आप
यानी कि दोनों के पास दलील है,
दोनों के पास दलील है,
वो पहले भी दलील से ही बयान कर रहे हैं और दूसरे भी दलील से बयान, यानी कि उनके दरमियान इख्तलाफ जो है वो दलील के साथ है, दलील के बगैर नहीं,
दलील के बगैर। अब इसमें बेहतर ये होता है कि आप दोनों राय को जमा कर, आप किसी एक राय की तरफ ना दें, दोनों को जमा कर, आप ये कहें कि ये भी मुराद था, अच्छा कंट्रडिक्शन नहीं है ना, आप ये कहें कि जी वो भी मुराद था जो कहत पड़ा
जी
अहले मक्का के ऊपर और उनको जो है वो भूख की वजह से धुआं नजर आता था, और ये भी मुराद है क़यामत से पहले जो है वो एक
आएगा,
एक दुनिया का अज़ाब आएगा, ये भी मुराद, दोनों मुराद हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें जो है वो तत्बीक पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और अहम बात यह कि बाज़ सहाबा ऐसे हैं जिनका तफसीर में मुकाम है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अल्लाह के वसल्लम की ये हदीस जो है ना सही बुखारी में 75 अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं ज़म्मनी रसूल सल्लम अल्लाह के वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया और फिर क्या अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब अल्लाह इसको किताब का इल्म दे। बहुत बड़ी बात
बिल्कुल
बहुत बड़ी बात बिल्कुल। तो सहाबा में भी सब सहाबा की तफसीर बराबर नहीं
यानी कि सहाबा भी किसी एक की तरफ जाते थे कि भाई इनकी तफसीर को हमने ज्यादा मोतबर मानना
अल्लाह के रसूल सल्लम की ये शहादत जो है ना कि किताबुल्लाह का इल्म और ये दुआ ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से लगा के बारे में किसी और सहाबी के बारे में।
अच्छा शेख इस तरह इसमें कोई एक और ऐसी रिवायत भी आती है ना कि कुरान सीखना हो तो इन इन सहाबा के पास जाओ कुछ पांच सहाबा का नाम भी लिया जाता है उनमें अब्दुल्ला बिन मसूद भी हैं इब्ने अब्बास भी हैं
मतलब कुछ लोगों को। अच्छा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मामला था
जी जी
कि जब उन्हें किसी आयत की तफसीर मुश्किल मालूम होती थी तो वो इनकी तरफ रुजू करते थे
इब्ने अब्बास के।
हाँ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के। तो बहरहाल हम बात को समराइज करते हैं कि तफसीर बिल मासूर वो दायरा है जिसे हमने बाहर नहीं निकलना। क्यों नहीं बाहर निकलना? क्योंकि हम इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं फ्यूचर की और फ्यूचर की जो इंटरप्रिटेशन है वो राय से नहीं हो सकती, अकल से नहीं हो सकती। फ्यूचर के बारे में हमने अगर कुछ प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए वाहिद सोर्स वही है, वही क्या है किताब और सुन्नत। किताब और सुन्नत की इंटरप्रिटेशन में जो सहाबा के अकवाल हैं वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए गाइडेंस है। सहाबा से गलती हो सकती है ये बात उसूली तौर पे ठीक है, लेकिन सारे सहाबा से गलती हो जाए ये मुमकिन नहीं है। तो तमाम सहाबा अगर एक मफहूम को बयान कर रहे हैं वो तो बाइंडिंग है, वो तो हुज्जत है। लेकिन अगर सहाबा का आपस में इख्तलाफ हो गया तो सबसे पहले क्या करें?
जमा करने को
जमा करें। अगर जमा नहीं हो सकता तो फिर तरजीह दें। किसको तरजीह दें?
जिसको सहाबा भी तरजीह देते
हैं। और फिर अहम बात यह है कि ताबीईन की तफसीर को भी अहमियत है। क्यों? क्योंकि गालिब तौर पे उन्होंने किससे सुना था?
सहाबा से।
सहाबा से सुना था, गालिब इम्कान भी है क्योंकि सहाबा के वो शागिर्दों में से। तो तफसीर बिल मासूर की रोशनी में आपने अलामात क़यामत को इंटरप्रेट करना है। और तफसीर बिल मासूर में भी कुरान तो जहरी बात है सबका सब अथेंटिक है, हदीस में सेहत ज़ौफ़ की बात आई है, सही हदीस, अथेंटिक हदीस, सहाबा के अकवाल की।
फिर उसके भी असूल है, वो भी कोई अपने से ही नहीं कह देता कि भाई ये सही है ये ज़ाइफ, उसके भी असूल,
उसके भी असूल, आप सही हदीस बयान करें।
यानी कि असल आपके सारी बात का लुबे लुबाब तो यही है कि ऐसे मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ दिया इस्लाम ने। इस्लाम ने अगर खजूर खाना भी हमें सिखाया हुआ है तो इतने बड़े बड़े चीजें बयान करने में जारी बात है इस्लाम ने हमें गाइड किया, उसके कुछ असूल बताए। बिल्कुल
सहाबा कराम में भी जो देखे ना तफसीर सहाबा ने की है। अब एक सहाबी की तफसीर है आपके पास कोई सनद ही नहीं है और दूसरे सहाबी की तफसीर है उसकी सनद है, तो आप किसको तरजीह दें?
सनद वाली को।
सनद वाली। अच्छा एक सहाबी की तफसीर है उसकी सनद ज़ईफ़ है, दूसरी सहाबी की तफसीर है उसकी सनद सही है,
सही
तो आप किस सहाबी की
तफसीर? सही के।
तो बात यह कि ये सब
असूल सेट है, सेट असूल है,
सेट असूल है, समझ में आने वाले
और लॉजिकल भी बनते हैं।
जब इख्तलाफ हो जाएगा ना सहाबा में तफसीर का तो फिर आप वहां पे फिर
उसके भी असूल है,
प्रेफरेंस के असूल निकाले,
फिर उसके भी असूल है
कि किसको अब हम प्रेफर करें,
जी जी तरजीह करें,
वो सब बातें समझ में आती है। हाँ जहां जाके अब दोनों रवायतें सही हो गई जैसे हमने कहा था अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, वहां आप जमा करें और वहां वो जमा हो भी जाती है।
जैसे अभी हमने एक मिसाल भी पेश की
और जहां आपको कोई भी मतलब बात नहीं मिल रही तो वहां सहाबी से अगर कोई ज़ईफ रवायत भी मिल जाती है लेकिन आप अपनी राय देने से बेहतर है।
हाँ
अपनी राय देने से बेहतर है कि आप सहाबी के किसी ज़ईफ कॉल,
लेकिन ये बताएं कि भाई इस कॉल के बारे में ज़ईफ
ज़ईफ है,
बिल्कुल ये बताएं
इसकी सनद जो है ना वो मुझे नहीं मिली, तो रेफरेंस जो है ना वो ऐसे फेंके ना।
और एक आपने लास्ट टाइम जब हमने इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में गुफ्तगू करा था बड़ी अच्छी बात की कि एक होता है कि आपने अपना मुकदमा खड़ा करना है उसके लिए कम अज कम जो आपकी नीचे बुनियाद है ना वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, वो सही अथेंटिक होनी चाहिए। हाँ मुकदमा खड़ा करने के बाद एक स्पोर्टिंग एविडेंस देना है तो उसके लिए अगर आप ज़ईफ की रिवायत बयान करें या कोई इस तरह की चीज बयान करें वो कह दें बात तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद मुकदमा ना खड़ा करें। मुकदमा कम अज कम इस बुनियाद पर आप खड़ा करें कि भाई मैं ये जो दज्जाल के बारे में सोच बयान कर रहा हूं ना मेरी जो बुनियादी दलील है वो ये हदीस है और ये अथेंटिक है, उसके बाद अगर आप थोड़े से इधर से स्पोर्टिंग एविडेंस क्रिएट करें तो ये बड़ा एक अच्छा असूल है।
मौलाना मौदूदी ने बस आखिरी बात के साथ हम ना इसको वाइंड अप करते हैं, खिलाफत मुलुकियत किताब लिखी, इस मिसाल से बात बहुत क्लियर हो जाएगी हमारी आज की डिस्कशन ना बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगी। उन्होंने कहा उनके सामने एक क्वेश्चन था, खिलाफत से मुलुकियत तक का सफर कैसे हुआ। अब उन्होंने कुछ तारीखी सोर्सेस ले लिए। मुझे जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि आप एक मौजू पे किताब लिख रहे हैं, ठीक है, आपका एक बड़ा नाम है, आप उसके मुकदमे में बताएं कि आप तारीख के जिन सोर्सेस से इस्तेफादा कर रहे हैं उस इस्तेफादा के उसूल क्या हैं। आज भी कोई रिसर्च आर्टिकल लिखता है, थीसिस लिखता है, पीछे अप्रोचेज है ना, ठीक है, आप कौन सी अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आपकी अप्रोच जो है वो क्वालिटेटिव है, मतलब आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, फिर आपकी अप्रोच जो है वो हिस्टोरिकल है, ठीक है, आपकी अप्रोच मतलब कुछ
जो भी है,
डॉग्मेटिक है, क्या है
उसको बयान करते हैं।
अब जिन सोर्सेज में मतलब तारीख तबरी में या और जो तारीख के सोर्सेज थे जिनमें ये बातें मौजूद थीं कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के जो साथी थे वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को सबो शतम करते थे, वो तो मौलाना ने नकल कर दी। उन्हीं सोर्सेज के अंदर ये बात थी कि जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथी थे वो हजरत अमीर मुआविया इवन के हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को सबो शतम करते थे।
उन्हीं सोर्सेज में
ये बात, ये मौलाना मौदूदी ने नकल नहीं की। अब बात यह है कि आपने कुछ नकल किया कुछ छोड़ दिया, क्राइटेरिया क्या था ये तो अपनी रीडर को बताएं ना।
जी जी, कि मैंने उसको छोड़ा क्यों, इसको लिया क्यों,
प्रिंसिपल क्या था,
ये बड़ी अहम बात है,
प्रिंसिपल क्या था। तो आप जब कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप एक कुरान की जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी आयत की, आप कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ये कहा, पहली बात तो ये है ये बताएं कि सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा या किसी और ने भी कहा, किसी और साहबी ने भी कहा। अगर किसी और ने भी कहा है तो क्या कहा है पहले वो बयान करें, फिर आप बताएं कि जी इन दोनों में कंट्रडिक्शन नहीं है,
ये जमा हो सकता है।
अगर इन दोनों में कंट्रडिक्शन है तो आप इसको क्यों तरजीह दे रहे हैं।
बिल्कुल,
बात यह है कि ये नहीं कि जी अपने
मतलब इससे फिर ये समझ आते हैं ना कि बंदे ने पहले से अपना मुकदमा तैयार किया हुआ, और उस मुकदमे के लिए
आपने पहले से अपना एक जहन तैयार किया हुआ है,
उसके लिए दलील लेके
आ रहे हैं, दलील आप ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं से कोई कॉल मिल गया आपने उसको,
और अब बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने कम से कम अपनी बातें दलील के साथ पेश कर।
जो प्योर रिसर्चर होते हैं ना वो क्या करते हैं,
न्यूट्रल होकर करते
हैं, वो इधर की भी बात देखता है उधर की भी बात देखता है, वो कहता है ये भी कॉल है ये भी कॉल है, ये भी कहने वाले हैं वो भी कहने वाले हैं, इनकी दलील ये है इनकी दलील,
अब अपने मुकदमे बनाए।
मुझे ये बात समझ में आ रही है और बड़े एक हम्बल ओपिनियन के साथ मुझे ये बात समझ में आती है, बाकी देख
लें ये बात। हाँ, ये मुतदिल रहा
है, लेकिन ये कतियत ये सर्टेनिटी मैंने देखी है
ये बहुत ज्यादा
लोगों के अंदर, ये जदीद
ऐसे फाइनल करके बात करते
हैं, फाइनल करके बात करते हैं,
इसके अलावा हो ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता, ये अप्रोच कभी इल्म के साथ
नहीं। इमरान हुसैन साहब ऐसे गुफ्तगु करते हैं, ये चीज सिर्फ मुझे समझ आई है तो इसमें मेरा क्या मसला है, कहते भाई तुम लोगों को नहीं समझ आ रही तो ये तुम्हारा मसला ना, मुझे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे समझा दिया है तो इसमें मेरा क्या मसला है।
सही बात ये है कि जिस ऑडियंस को वो समझा रहे होते
हैं,
अब आप एक बंद कमरे में बैठ के
भी बना ले, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है,
आपके सामने ऑडियंस बैठी नहीं कभी, आप उलमा के साथ बैठे नहीं, बस सिर्फ आप जो है वो अपने
पर अपने मौके बयान
करें, गुफ्तगू में उनके ऊपर जो है वो दो चार जो है वो
बंदे बिठाने
दे दें,
जी जी,
इस तरह से नहीं, किसी के साथ बैठेंगे पता चलेगा ना आप कितने पानी में वो कितने पानी।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली,
उस वक्त तक तो आप जो मर्जी करते रहे, हर आदमी का अपना एक हल्का है, ये बाप है, जिसे कहते हैं हमारे हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने सबको झल्ले दिए हैं, हर एक उसके हिस्से के झल्ले मिले हुए हैं, मतलब उसके फॉलोअर्स, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया, आप देखिए उनके भी फॉलोअर्स
हैं
लाखों में,
अल्लाह मान लिया
खुदाई का,
खुदा मान लिया,
खुदा मान,
छोटी बात नहीं है,
दुनिया में झल्लों की कोई कमी नहीं है, सीधी सी बात, स्टूपिड लोगों की कोई कमी नहीं है,
तमाशाइयों की कमी
नहीं है, जो दावा करेंगे आपको फॉलोअर्स मिल
जाएंगे,
ये कोई दलील नहीं है। बात यह है कि कितने अहले इलम हैं जिन्होंने आपकी बात को वेटेज दिया, कितने अहले,
बहुत अच्छी बात,
हम ये नहीं कहते कि आप नई ओपिनियन ना दें, लेकिन दुनिया में 1400 साल हो चुके, 1500 साल इस्लाम को है, बहुत लोगों ने नई ओपिनियन दी, कुछ ओपिनियन ऐसी हैं किताबों का हिस्सा बन गए, कुछ ऐसी हैं जो नई ओपिनियन आई हैं और उन्होंने तारीख का धारा मोड़
धारा बदल के रख दिया। बिल्कुल,
इब्ने तैमिया ने भी नई ओपिनियन दी, 40 से ज्यादा मसाइल में इब्ने तैमिया आइम्मा अरबा के खिलाफ खड़े हैं, आज मुल्क के मुल्क इब्ने तैमिया के कोल पे कानून साजी कर रहे हैं, लेजिस्लेशन कर रहे हैं,
खड़े हैं एक बंदे के
लेजिस्लेशन कर रहे हैं, शेख देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाने में अफकार पेश कर रहे थे लोग कत्ल करने को दौड़े हैं, आज शेख देहलवी देहलवी हो रही है, हर मसलक बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कह रहे हैं कि
हमारा
है,
कैसी बात,
तो बात यह है कि
यानी कि उन्होंने भी अपनी राय ही बयान रखी थी जो थे दूसरों के खिलाफ जा रही थी,
पीछे नहीं थी। ये नहीं थे कि वो लोग जो
है नई राय थी,
नई राय थी। नई राय का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपके अंदर अगर इल्मी काबिलियत हो,
यानी ये भी एक प्रोपोगंडा है जो दीनी तबके के खिलाफ कि ये नई राय दो ना, ये इनकी छेड़ है, आपने मौलवी को छेड़ना है, उसके सामने कोई नई राय बयान कर देखो फिर ये कैसा। वो
इमाम शाफी देखें अल मुवाफकात मकासिद शरिया का जो इन्होंने नुक्ते नजर दिए, इससे पहले था ही नहीं। आप शातवी हो रही है
सुभानअल्लाह।
तो अब बात यह है कि अगर आपके अंदर सलाहियत और काबिलियत होती है, ठीक है, आप जब नई राय देते हैं ना तो एक ठीक है उस वक्त रेजिस्टेंस आएगी,
लेकिन नॉर्मल भी है,
एक वक्त गुजरने के बाद
एक्सेप्टेबिलिटी भी आती है,
अल्लाह ताला जो है वो आपकी लिए एक एक्सेप्टेंस पैदा कर देगा। मुझे कई लोग कहते हैं आप साहब आप ऐसी बातें करते हैं, मैं देखो बात यह है इसमें क्या परेशानी की बात है, अल्लाह ताला कुरान में ये कहते हैं कि जो तो प्योर सोना है ना, अल्लाह ताला ने एक जगह पर मिसाल दी, जब आप उसको भट्टी के अंदर तपाते हैं वो तो नीचे रह जाता है, और जो झाग होती है ना फयज़ा बुजुफा तो वो उड़ जाती है, तो जो प्योर दीन है वो बाकी रह जाएगा, राय वही बाकी रहेगी उम्मत के अंदर जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहेंगे, जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहेंगे। नई राय में कोई इशू नहीं, लेकिन मैं यही बात कह रहा हूँ एनर्जी जाया ना करें। हजारों लोग हैं दुनिया में आए, नई आरा पेश की, आज किताबों का हिस्सा है, किताबों में भी कुछ नहीं मालूम कौन है कौन नहीं। एनर्जी जाया ना करें, पहले दीनी काबिलियत और सलाहियत पैदा करें, ठीक है, ऐसी दीनी काबिलियत और सलाहियत पैदा करें और उस तरह से बात करें संजीदा कि एक आलमी दीन आपको अप्रिशिएट कर सके, जिसका दीन के अंदर रसूख है।
झल्ला करे तो वो तो वैल्यू नहीं है ना,
वो फिर आप खामखा अपने आप को डी वैल्यू कर,
बिल्कुल
ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। इल्म की दुनिया में आपका कोई मुस्तकबिल
ऐसे, ऐसे
कोई मुस्तकबिल
ऐसे ऐसे।
चलिए बहरहाल
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो गई है, काफी तफसील से गुफ्तगू हो गई है, और आई थिंक इस गुफ्तगू का जो लुबे लुबाब है सारे का सारा, वो हमने वो असूल बयान किए हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर हमें एंड ऑफ टाइम्स को जो है वो इंटरप्रेट करना चाहिए, और इन्हीं असूलों की बुनियाद पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में हम एंड ऑफ टाइम्स को जो तस्करा करेंगे इन्हीं असूलों की बुनियाद पर इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी सोच और अपनी फिक्र को जो है वो निखारने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।